Temple Square के सम्मेलन केंद्र से जोसोल लेक शहर में है यह यीशु मसीह का गिरजाघर अंतिम दिनों के संतों का 179 वार्षिक महासम्मेलन है जिनके भाषणकर्ता महाअधिकारियों और महापद अधिकारियों में से चुने गए हैं और मोमन टैबनेकल द्वारा गायक मंडली द्वारा इस सभा का संगीत प्रस्तुत किया जाएगा। गिरजाघर के सदस्य और अधिकारी दुनिया के कई भागों से आए हैं ताकि अपने गिरजाघर नेताओं से सलाह और आदेश प्राप्त कर सके। इस प्रसारण को बोनेवाल कम्युनिकेशन द्वारा जन सेवा के रूप में उपलब्ध किया गया है। बिना लिखित अनुमति के इस कार्यक्रम का कोई भी उत्पादन, रिकॉर्डिंग, प्रतिलेखन या अन्य इस्तेमाल मना है।
Brothers and sisters,
भाइयों और बहनों, हम आपका स्वागत करते हैं इस चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लैटर-डे सेंट्स के 179वें एनुअल जनरल कॉन्फ्रेंस में, और एक खास स्वागत करते हैं उन सदस्यों और दोस्तों का जो यहाँ इस कॉन्फ्रेंस सेंटर और विश्वास भर में ही जहाँ कहीं भी है भाग ले रहे हैं। प्रधान थॉमस एस मॉन्सन जो इस सम्मेलन में नेतृत्व करता है, ये बताया है कि मैं इस बैठक का संचालन करूं। हम आभारी हैं महाअधिकारियों और महासहायक अधियक्ताओं की उपस्थिति के इस सम्मेलन में। हम आभारी हैं उस सभी दूरदर्शन और प्रसार केंद्रों और सैटेलाइट और केबल के लिए जिन्होंने अपनी सेवाएं के लोक सेवा के रूप में बैंड की सम्मेलन को इतने बड़े श्रोताओं का तक पहुंचाते हैं। इसे बैठक का संगीत टैबरनेकल क्वायर द्वारा प्रदान किया जाएगा मैक वुलबर्ग और रायन मेफी के निर्देशन में, और ऑर्गन पर होगा क्ले क्रिस्टेंसन। गायक मंडली इस बैठक का शुरुआत करेगा ग्लोरी टू गॉड गॉड ऑन हाई गाकर, और अब हमें देंगे रिजॉइस द लॉर्ड इज किंग। एल्डर जॉन एम मैडसन 70 के फिर प्रार्थना बोलेंगे।
Rejoice, the Lord is King, your Lord हे हमारे पिता परमेश्वर, हमारे हृदय सच्चाई से भर गए और खुशी से भर गए हैं इन शब्दों से जो गाना हमने अभी गीत हमने सुना है। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं जो आशीर्वाद आप हम सबको देते हैं और आपके पुत्र यीशु मसीह से हमसे मिलता है, जो हमारा उद्धारकर्ता है, हमारा राजा है। और हम आज एक एकता के साथ प्रार्थना करते हैं कि आपके आशीर्वाद हमारे प्रोफेट प्रेसिडेंट थॉमस एस मॉन्सन के साथ रहे, कि उसकी निमंत्रण और आज्ञाओं और उनके चेलों के आज्ञाओं का हम पालन करें। और जो संगीत यहाँ सुनाई देगा उसके लिए हम आभारी हैं। और हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आपके पवित्र आत्मा हमारे साथ रहे, कि हम सब आपकी बातों को सुने और समझे और जाने, यीशु मसीह के नाम से आमीन।
We shall now be.
अब हम हमारे भविष्यवक्त प्रधान थॉमस एस मॉन्सन को सुनकर परेशान होंगे। उनके टिप्पणियों के बाद गायक मंडली गाएंगी Choose the Right गीत की समाप्ति पर एल्डर रिचर्ड जी स्कॉट 12 के परिषद के हमसे बातें करेंगे और उनके बाद आएंगी बहन विकी एफ मात्सुमोरी, प्राथमिक महाअध्यक्षता के दूसरे सलाहकार। उनके टिप्पणियों के बाद एल्डर एल विटनी क्लेटन सत्तर की अध्यक्षता का हमसे बातें करेंगे। गायक मंडली और सभा,
मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं आपको देता हूं। यीशु मसीह का गिरजाघर अंतिम दिनों के संतों के जो 179 और वार्षिक महासम्मेलन का शुरुआत करते हैं। मैं कितना आभारी हूं इस युग के लिए जिसमें हम रहते हैं, एक युग जहां टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ गया है कि हम तुम सभी को जो दुनिया भर में है फैले है से संपर्क कर सकते हैं। जब महाअधिकारियां और संकाय नेताएं यहाँ है इस सम्मेलन केंद्र में खड़े हैं जो सोल्ट लेक सिटी में है, हमारी आवाज से तुम तक कई साधनों द्वारा पहुंचेंगी। हालांकि हम तुमसे अंग्रेजी में बातें कर रहे होंगे, तुम 97 भाषाओं में सुनोगे। पिछले वर्ष अप्रैल में हमारी मुलाकात के बाद हमने सुंदर पहाड़ का यूटा मंदिर जो साउथ डोडन यूटा में है मंदिर का समर्पित किया। प्रस्तुति में यूटा का बहुमूल्य देन दोहराया गया था गीत और नाच द्वारा। कुल मिलाकर लगभग 14,000 युवा ने इन दो रातों में भाग लिया। हम मंदिरों का निमंत्रण जारी करेंगे रखेंगे। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को मौका मिले मंदिर जाने के लिए और अत्यधिक लंबा सफर ना करना पड़े। विश्व भर में हमारे सदस्यों में से 83% है जो एक मंदिर के 300 किलोमीटर के अंदर रहते हैं। ये प्रतिशत रहेगा जैसे जैसे हम नए मंदिरों का निमंत्रण करेंगे विश्व भर में। इन दिनों 130 मंदिर संचालन में है और 16 की घोषणा हो जाएगी। मैं खुशी के साथ बतलाना चाहूँगा कि 5 और मंदिरों को बनाने का शुरुआत हम करेंगे। ब्रिगम सिटी यूटा में, कॉन्सेप्टियन चिली में, Fortaleza, Brazil में, Fort Lauderdale, Florida में और Sapporo, Japan में. 10 लाख धर्म विद्यार्थी हमारे रित चाहने वालों को के लिए हर वर्ष मंदिरों में पूरी होती है. मैं भविष्यवक्ता जोसेफ एफ स्मिथ के शब्द पसंद करता हूँ. उसने मंदिर के सेवा और आत्मिक दुनिया जो मरणशील जीवन के बाद मिलती है के विषय में बात की थी. उन्होंने कहा, उन कोशिशों के द्वारा जो हम उनके लिए करते हैं, उनकी कैद की जंजीर उनसे छूटेगी और उनके आसपास जो अंधेरा है वो दूर हो जाएगा, कि उन पर रोशनी चमकेगी और वो आत्मिक दुनिया में सुन सकेंगे और कार्य को जो उनके लिए यहाँ लोग कर रहे हैं और तुम्हारे साथ खुशियाँ मनाएंगे जब तुम ये कार्य करोगे. भाइयों और बहनों, गिरजाघर की बढ़ती होती रहेगी जैसे वो जब से स्थापित हुआ था 179 वर्ष पहले से हो रहा है. वो और लोगों की जिंदगियां बदल रहा है और हर वर्ष और विश्व भर में फैल रहा है और प्रचारक सेना उनको ढूंढती है जो उनका सच्चाई की तलाश में है. हम गिरजाघर के सभी सदस्यों से आज्ञा करते हैं कि वो अपने न्याय धर्म से दोस्ती करें, उन्हें सहायता दें कि वे महसूस करें. मैं तुमसे आग्रह करूंगा कि तुम उन इलाकों के लिए अपना विश्वास और प्रार्थनाएं जारी रखो जहां हमारे प्रकोप कम हैं और जहां हमें इस समय खुले आम सुसमाचार करना चाहिए, चमत्कार हो सके. अब मेरे भाई और बहनों, हम उन संदेशों को सुनने के लिए उत्सुक हैं जो हमारे लिए प्रस्तुत किया जाएगा. वो जो हमसे संपर्क करेंगे निस्वर किया, वो उन विषयों के बारे में प्रसन्न थे जो वो हमारे साथ बैठेंगे, कि हम अगर हम चाहें प्रभु की आत्मा से भर जाएं. यीशु मसीह के नाम से आमीन. Before
Throughout the ages, many have obtained guidance.
इतिहास में कई लोगों ने निर्देशन प्राप्त किया है जो लाभदायक था उनके जीवन की चुनौतियों को सुलझाने में उस सम्मानित लोगों के उदाहरण पर चलने द्वारा जिन्होंने इस तरह की मुसीबतों को सुलझाया है आजकल दुनिया की स्थिति इतनी जल्द बदल रही है कि इस तरह से मुसीबतों को सुलझाना हमारे पास में नहीं है स्वामी में वास्तविकता पर खुश होता हूँ क्योंकि ये एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देती है जहाँ हमें ज़रूरत के कारण आत्मा पर और निर्भर होते हैं तुम क्या कर सकते हैं जो अपने जीवन में सही फैसलों तक पहुंचाने की चमत्कार को बढ़ाने के लिए क्या सिद्धांत है जिस पर आत्मिक संदेशों का आदान प्रदान निर्भय है ऐसे संदेशों के आदान प्रदान की क्या संभावित रुकावटें हैं स्वर्ग के पिता जानते हैं जानते थे कि तुम्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और कुछ ऐसे फैसलों करने पड़ेंगे जिसको सही ढंग से फैसला करना तुम्हारी चमत्से से बाहर होगा उनकी खुशहाली की योजना में उन्होंने तुम्हारी मरणशील जीवन की ऐसी चुनौतियों और फैसलों के दौरान तुम्हें सहायता देने के प्रबंध दिया है यह सहायता तुम्हारे पवित्र आत्मा द्वारा आत्मिक निर्देशन से मिलेंगे और तुम्हारे क्षमता के बाहर एक शक्ति है जो एक प्रेम स्वर्ग का पिता चाहता है मुझे यकीन है कि कोई और सरल फॉर्मूला या ढंग नहीं है जो तुम्हें तत्काल मौका देगा पवित्र आत्मा का निर्देशन पाने की क्षमता में माहिर होने के लिए हमारे पिता हमसे उम्मीद रखते हैं कि तुम सीख सको कैसे तुम दिव्य सहायता हासिल करोगे अगर तुम्हें प्रेरित निर्देशन प्राप्त किया है सिर्फ मांगने से और कोई भी मेहनत के बिना तुम कमज़ोर हो जाते और ज़्यादा उन पर निर्भर हो जाते वो जानते हैं कि ज़रूरी आत्मिक बढ़ती आएगी जब तुम परेशान करोगे सीखने के लिए कैसे तुम आत्मा का निर्देशन पाओगे शुरुआत में जो कार्य उत्साह भंग लगेगा वो आगे चल के संभालन में और आसान हो जाएगा जब तुम कोशिश करोगे आत्मा के एहसास को पहचानोगे और उस पर अमल करोगे पवित्र आत्मा द्वारा निर्देशन पाने में तुम्हारे भी विश्वास बढ़ेगा मैं गवाही देता हूँ कि जैसे तुम अनुभव और सफलता हासिल करोगे आत्मा द्वारा निर्देशित होकर तुम्हारा विश्वास उन धर्माओं पर जो तुम महसूस करते हैं और साफ हो जाएगा आध्यात्मिकता जो दो पल देती है पहला है प्रेरणा जानने के लिए क्या करना है दूसरा है शक्ति या उसे करने की क्षमता प्रेरणा और शक्ति साथ हो जाती है इसीलिए निफाय ये लिख सकता था मैं जाऊंगा और वो करूंगा जिसकी आज्ञा प्रभु ने मुझे दी है वो उन आध्यात्मिक कानों का जनता जिस पर प्रेरणा और शक्ति आधारित थी हम परमेश्वर प्रार्थनाओं के जवाब देता है और हमें आत्मिक निर्देशन देता है जब हम आज्ञाकारी तरीके से जीते हैं और उनमें जो विश्वास आवश्यक है मैं अब यह अनुभव बतलाऊंगा जैसे मैंने आत्मिक निर्देशन पाने का तरीका सीखा एक रविवार को मैंने मेक्सिको सिटी के एक स्पेनिश सका की पुरोहिति सभा में उपस्थित थी मैं अच्छी तरह याद करता हूँ कैसे एक विनम्र मेक्सिकन पुरोहितों ने नेता संघर्ष कर रहा था अपने पास में सुसमाचार की संचियों को बतलाने के लिए वो जानता था कि ये पद उपस्थित ब्रदाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है उनके स्वभाव में मुक्तिदाता के प्रति स्वागत प्रेम और उनके विद्यार्थियों के लिए प्यार देखता था उनकी ईमानदारी पक्का इरादा और प्यार के एक आत्मिक शक्ति को हम कमरे को बाहर दिया मैं बहुत प्रभावित हुआ फिर मैं व्यक्तिगत प्रभाव पाने लगा उन सिद्धांतों को विस्तृत करके जो विम्र शिक्षक सीख रहे थे वो निजी थी और उस क्षेत्र के मेरे सौंपे गए कार्य से जुड़ा था वो मेरे बहुत अरसे के सिक्के के प्रयत्नपूर्ण कोशिशों का जवाब की. जैसे ऐसे प्रभाव आते गए मैं सावधानी से लिखता गया. इस क्रिया के दौरान मुझे कुछ बहुमूल्य सच्चाई दी गई जिसकी मुझे बहुत ज़रूरत थी प्रभु का एक प्रभावशाली सेवक बनने के लिए. इस बातचीत का विवरण पवित्र है और कल्पति आशीर्वाद की तरह मेरे व्यक्ति लाभ के लिए लिया था. बाद में मैं अपने वर्ड के रविवार पाठशाला में गया जहां एक बहुत ही प्रमुख शिक्षक पद पढ़ा रही थी. वो अनुभव बिल्कुल अलग था उस अनुभव से जिसका लाभ मैंने पुरोहित सभा में उठाया था. मुझे ऐसा लगता था कि शिक्षक के जानबूझकर अश्वत संदर्भ और आसमानीय उदाहरण चेने के पद के सिद्धांतों को बतलाने के लिए मुझे यह साफ स्पष्ट हुआ कि यह शिक्षक इस शिक्षा के मौके के फायदा उठा रहे हैं कक्षा को रिझाने के लिए उसके ज्ञान के भंडार से. किसी भी तरह वो सिद्धांतन को बतलाने की इच्छा नहीं करता था जैसे ब्रह्म प्रोहितो नेता ने किया था. उस वातावरण में दृढ़ भावनाएं मुझ में फिर आने लगी. मैंने उन्हें लिखा दिया. संदेश में खास सलाह था कैसे मैं और प्रभावशाली बन प्रभाव की एहताओं को. हर एक भावान को लिखने के बाद मैंने उस एहसान पर विचार किया जो मैंने प्राप्त किया था यह जानने के लिए कि क्या मैंने उन्हें ठीक रहा लिखित में उठारा था या नहीं. परिणाम अनुसार मैंने कुछ बदलाव किया उसके लेख में. फिर मैंने उसको अर्थ और प्रयोग का अध्ययन किया मेरे अपने जीवन में. बाद में मैंने प्रार्थना की प्रभु से पुनर्विचार करते हुए कि क्या मैं सोचता था मुझसे आत्मा द्वारा सिखलाया गया था. जब शांति का एहसास हुआ मैंने उसे धन्यवाद दिया निर्देशन के लिए. फिर मैं प्रभावित हुए पूछने के लिए कि क्या और भी दिया गया है. मैंने और भी प्रभाव प्राप्त किया और उन्हें लिखने का कार्य विचार करना और प्रार्थना करना पुष्टि के लिए फिर दोहराया गया. एक बार और मैं प्रतीत हुआ पूछने के लिए क्या कुछ और भी है जो मुझे जानने वाले चाहिए. वहाँ था जब वो आखिरी सबसे पवित्र अनुभव समाप्त हुआ. मैंने कुछ बहुमूल्य खास निजी निर्देशन प्राप्त किए थे जो कोई और आशा कर सकता को उसे इस जीवन में मिले अगर मैं उस जरूरत के प्रभाव का पर अनुरक्षा नहीं किया होता. जो मैंने वर्णन किया है कोई अलग अनुभव नहीं. इसमें कई सच्चे सिद्धांत जुड़े हुए ऐसे प्रभु से उनके प्रतिभा के बच्चों के लिए बातचीत. मैं विश्वास करता हूं कि तुम शायद सबसे बहुमूल्य निजी आत्मा के निर्देशन को नहीं सुन कर सकोगे अगर तुम उत्तर नहीं दोगे लिखोगे नहीं और तुम्हें जो पहला प्रभाव प्राप्त हुआ उस पर अमल नहीं करोगे. आत्मा पर प्रभाव तुम्हें मिल सकता है बहुत जरूरी प्रार्थना के जवाब में. यह उस समय भी जब प्रभाव की आवश्यकता हो मगर उसकी मांग नहीं की गई. मगर प्रभु सिखलाने के लिए तुम पर दबाव नहीं डालेगा. तुम्हें अपने चुनने की क्षमता का इस्तेमाल करके आत्मा को स्वीकृति देनी होगी तुम्हें सिखलाने के लिए. जब तुम इसे अपने जीवन को दस्तूर बने जाओगे आत्मिक निर्देशन से मिलने वाले एहसास का प्रति ग्रहणशील होगे. पवित्र आत्मा का प्रेरणा दिलाने वाले प्रभाव से विजय पाया जा सकता है या छिपाया जा सकता है जोरदार जज्बातों से, जैसे गुस्सा, जलन, डर या घमंड. जब ऐसे प्रभाव मौजूद हो तो तीखी मिर्ची खाते समय अंगूर के मजेदार स्वाद का आनंद लेना जैसा होता है. दोनों स्वाद मौजूद है मगर एक दूसरे को पूरी तरह प्रजित कर जाता है. कुछ लोगों को वो माना लेता है ये कहकर कि वो प्रभु द्वारा ऐसी निर्देशन नहीं प्राप्त कर सकता है. शैतान महिर से अश्लील सहायता के लत पड़ने वाली शक्ति का इस्तेमाल करने में जैसे लोगों को आत्मा से निर्देशन पाना कम हो जाता है, अश्लील सहायता का आस्क्रमण अपने सभी नीच तोड़ने वाली विनाशक रूप में निदुख वेदना दिल के पीड़ा पहुंचाएगा. चाहे वो लिखित रूप में हो, चलचित्र, दूरदर्शन, अश्लील गीत के बोल में, फोन पर घंटी ये एक अश्लील चित्र वाला निजी कंप्यूटर पर अश्लील सहायता लत पड़ा देता है. लूसिफर का ये प्रभावी औजार उन्हें जो इसका इस्तेमाल करते हैं कि भूरी हृदय और आत्मा को अपने और सब के नर्जाओं के गिरा देता है. उसका दुष्ट तारक मार्ग जाना पहुंचाना है. इस जीवन से राहत देने के बाद यह प्रयोग कार्य गंभीर होता जाता है और शक्तिशाली उत्तेजना के साथ जब तक जाल बंद नहीं होता है और एक बहुत अनैतिक लड़ पड़ने वाली आदत अपना निज कार्य में बंद लेती है. अश्लील सहायता में भाग लेना उसकी किसी भी भयंकर रूप में एक प्रतिकरण है अनियंत्रित स्वार्थीपन का. कैसे एक पुरुष, खासकर एक पुरोहितों का प्रोहिति वाहक नहीं सोच सकता है बहु आत्मिक और आत्मिक कष्ट महिलाओं को होता है. हाँ, क्या प्रेरित निफाय ने घोषणा की और शैतान विश्वास दिलाकर शांत कर देगा संसारिक सुरक्षा में. इस प्रकार शैतान उनकी आत्माओं को ठगेगा और चतुराई के साथ नारिक में ले जाएगा. अगर तुम अश्लील सहायता में फंसे हो, एक संपूर्ण प्रतिबंध बनाए उसे आज ही विजय अपने के लिए एक शांत जगह ढूंढें. अत्यावश्यक रूप से सहायता और सहारा के लिए प्रार्थना करें. माता पिता सतर्क रहे कि अश्लील सहायता का लत युवकों का बहुत छोटी उम्र से हो जाती है. स्टेक प्रदान और बिशप इस बुराई की चेतावनी दें उन्हें जिनको तुम जानते हो कि उन्हें चकर लिया गया है और आमंत्रित करें तुम्हारे पास सहायता लें. धैर्य रखे जब तुम आत्मा से निर्देशन पाने के क्षमता में परिपूर्ण हो रहे हो. मैं तुम्हें आत्मिक निर्देशन मिलेगा. मैं गवाही देता हूँ कि प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारे मन और दिल से बात कर सकता है. कभी भी यह प्रभाव सिर्फ सामने एहसास होता है. कभी कभी यह निर्देशन इतनी स्पष्टता से आता है और निशानदे से कि वो हम लिख सकता है एक एक शब्द से आत्मिक गायती तरह. मैं पवित्र गवाही देता हूँ कि जब तुम प्रार्थना करोगे अंतर आत्मा की जोश में विमारता से और कृतज्ञता से अपने जीवन के सभी पहलुओं में पवित्र आत्मा द्वारा निर्देशन पाना सीख सकते हो. मैंने इस सिद्धांत की सच्चाई की पुष्टि की है अपने जीवन की कठिनाई और मुसीबतों के द्वारा. मैं गवाही देता हूँ कि तुम सिद्धांतों को निजी रूप से सीख सकते हो और माहिर हो सकते हो आत्मा का निर्देशन पाने में. इस तरह मुक्तिदाता तुम्हें चुनौतियों को सुलझाने में निर्देशन देगा और तुम अपने जीवन में शांति और खुशहाली का आमन पाओगे. यीशु मसीह के नाम में आमीन.
At the end of the day, a pair.
समाप्ति पर प्रचारकों के जोड़ा में से एक अचानक से पलटकर दूसरे से कहता है, घर लौटे समय मैं महसूस करता हूं कि हमें एक और जगह जाना चाहिए. एक घरेलू शिक्षक प्रेरित होता है अपने भेंट करने वाले एक परिवार को संपर्क करने के लिए जिन्हें उसने कुछ ही दिन पहले भेंट किया था. एक जवान महिला अपने पाठशाला की सहेली की पार्टी में जाने की योजना बनाती है, फिर प्रेरित होती है कि इस बार वो घर पर ही रहे. प्रचारकों ने कैसे जाना कि उन्हें उस व्यक्ति के दरवाजे पर दस्तक देना था. यह जवान महिला ऐसी स्थिति से दूर रहने जहां उसके आदर्शों से समझौता करना पड़ता है. हर एक स्थिति में वो पवित्र आत्मा का प्रभाव द्वारा निर्देशित हुए थे. आमतौर पर इस तरह के अनुभव विश्व भर के सदस्यों के साथ होता रहता है और वो लोग हैं जो आत्मा के निर्देशन को महसूस करना चाहता है अपने दैनिक जीवन में. जबकि हर एक व्यक्ति आत्मा के फुसफुसाहट को पहचानना सीख सकता है, उसे सीखने के कार्य को सरल बनाया जा सकता है जबकि कोई पवित्र आत्मा के विषय में समझने में सहायता करे. सिद्धांत को समझना. धर्म सिद्धांत और वादे में दूसरों की सहायता करने की जरूरत का वर्णन किया गया है. जायोन में जो माता पिता है या उसके किसी और योजी स्टेक्स में को बतलाया गया है कि वो अपने बच्चों की सहायता करे. चाहे एक कशका एक प्रचारक बातचीत या एक पारिवारिक शाम सभा में पवित्र आत्मा के विषय में सिद्धांत को सिखलाना दूसरों की इस उपहार को समझने में मदद कर सकती है. हमें सिखाते हैं कि जब मसीहा की आत्मा हर एक व्यक्ति को इसलिए दी गई है जिसे वो उचित को अनुचित से जान सके. ये साथ हमेशा हमारा हो सकता है अगर हम योग्य रहते हैं. हमें बतलाया गया है कि प्रभु की आत्मा अपवित्र मंदिरों में निवास नहीं करती और जब हम सद्गुण हो हमेशा अपने सोच को सुंदर बनाए दे. धर्मशास्त्र और भविष्यवक्ता सिखलाते हैं ये हमेशा का साथ कैसा महसूस होता है. प्रभु हमें बतलाता है कि वो हमें बतलाएगा हमारे मन और हृदय में पवित्र आत्मा द्वारा जो हम पर आएगा और हमारे हृदय में बस जाएगा. इनेस ने लिखा, और जिस समय मैं इस तरह अपने आत्मा के आंतरिक संघर्ष में लीन था तब सुनो परमेश्वर की वाणी पुर मेरी बुद्धि में मुझे सुनाई दी. जोसेफ ने कहा, तुम पर बुद्धिमानता अपने आप में बहने दो, शायद वो तुम्हें विचार देती रहे. प्रधान आयरिंग ने पवित्र आत्मा के प्रभाव के वारन ऐसा किया, शांति आशा और आनंद. उसने फिर कहा, ज्यादातर मैंने भी प्रकाश की सनसनी महसूस की है. मेरी मनपसंद वर्णन एक 8 वर्ष के लड़के से मिलता है जिसने अभी अभी पवित्र आत्मा पाई थी. उसने कहा, वो सूर्य के प्रकाश जैसा महसूस हुआ. हालांकि इन सूर्य प्रकाश के चनन को जाना शुरू में हमेशा आसान नहीं होता। मोमन धर्मशास्त्र हमें कुछ विश्वासी लमिनाइटियों के विषय में बतलाता है। अग्नि और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दिया था और वो ये जानता भी नहीं था। हम दूसरों को आत्मा के आश्वासन से परिचित होने में मदद करते हैं जब हम अपने जीवन में पवित्र आत्मा के प्रभाव की गवाही उनके साथ बांटते हैं। याद रखिए, कुछ अनुभव बदलाने के लिए बहुत पवित्र होते हैं, फिर भी अपने जीवन में आत्मा की गवाही बांटने से जो इन आश्वासन से परिचित नहीं है जान जाएगी कि उन्होंने कब ऐसा महसूस किया था। मैं अपने परिवार की पहले सदस्य थी जो गिरजाघर में शामिल हुई थी। 8 वर्ष के होने कारण मैंने इंतजार किया कि बपतिस्मा के बाद मैं कुछ अलग महसूस करूंगी। सच कहती हूँ, एक ही बात मैंने महसूस किया जब मैं पानी से बाहर आई, सिर भीगी हुए। मुझे दूसरे दिन की उपवास और गवाही की सभा में वो अनुभव हुआ जो मैं अब जानती हूँ कि पवित्र आत्मा का प्रभाव है। एक भाई अपनी गवाही बयान करने की उन्होंने गिरजाघर की सदस्य से कैसे आशीर्वाद प्राप्त की है। मैंने महसूस किया मेरे बदन में गर्मी की भरमार हो गई है। 8 वर्ष की थी पर मैंने पहचान लिया कि ये कुछ अलग है। मैंने एक शान आलम महसूस किया। कुछ ऐसी जगह है जहां आत्मा को महसूस करना आसान होता है। गवाही की सभा और महासम्मेलन कुछ ऐसी जगह है। निषाध मंदिर भी एक जगह है। हमारी चुनौती है कि हम हमारे घरों और हर दिन और गिरजाघर में हर सप्ते ऐसे वातावरण पेश करें जहां आत्मा महसूस की जा सके। एक वजह हमें प्रोत्साहित किया जाता है नित दिन प्रार्थना करें और धर्मशास्त्र पढ़ने, क्योंकि ये दोनों गतिविधियां आत्मा को हमारे घरों और परिवार सदस्यों के जीवन में आमंत्रित करती है। क्योंकि आत्मा का वर्णन स्थिर धीमी आवाज के रूप में किया जाता है, हमें अपने जीवन में शांत समय रखना जरूरी है। प्रभु ने हमें सलाह दी, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं परमेश्वर हूँ। अगर हम हर दिन एक स्थिर और शांत समय निकालेंगे जब दूरदर्शन, कंप्यूटर, वीडियो गेम्स या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से हम घेरे नहीं होंगे, हम उस स्थिर धीमी आवाज को मौका देंगे हमें व्यक्तिगत प्रतिकारण प्रदान करने के लिए और मीठी निर्देशन, फिर से आश्वासन और सहानुभूति से के फुसफुसाहट को हमें दे। इसी तरह हम गिरजाघर पर भी ऐसा वातावरण पेश कर सकते हैं जो आत्मा को शिक्षण के द्वारा दिव्य पुष्टिकरण देने का मौका देगा। शिक्षक और नेता पाठ पढ़ाने या सभा के निर्देशन करने से ज्यादा कार्य करते हैं। एल्डर रिचर्ड जी स्कॉट कहता है, अगर तुम अपने चतरा के साथ कुछ भी नहीं हासिल कर सको, सिर्फ उन्हें मदद करो आत्मा के प्रभाव को पहचानने में और उसके पालन करने में, तुम उनके जीवन में असीम और अनंत रूप से आशीष लाओगे। एक सनबीम शिक्षक ने अपने क्लास के सदस्यों को कंबल में एक के बाद एक लपेटा। उन्होंने ये सिखलाने के लिए कि आत्मा किस तरह ऐसी सहानुभूति और सुरक्षा जैसा होता है। उसने बताया कि जिस समय वो अपने बेटी के साथ प्राथमिक में अतिथि के रूप में आई थी, वो लेस एक्टिव थी गिरजाघर में। पाठ के कुछ हफ्तों बाद माता को विफलता हो गई। वो दुखी हो गई थी जब अचानक उसने अपना पन और शांति महसूस की। ऐसा लगा किसी ने उसे गर्म कंबल से ढक दिया हो। उसने आत्मा के फिर से आश्वासन पहचाना और जानती थी कि स्वर्ग के पिता उससे वाकिफ थे और वो उससे प्रेम करते थे। जब हम आत्मा के फुसफुसाहट को पहचानना जान जाते हैं, हम उसको सुन सकेंगे। हमें उनके राज्य के शांतिपूर्ण बातें सिखलाते हुए और सभी चीजों जो करना चाहिए, हम अपने प्रार्थनाओं के जवाब को पहचानेंगे और जान पाएंगे कि कैसे सुसमाचार को पूर्णता से हर दिन जाएंगे। हमें राह दिखाई जाएगी और रक्षा की जाएगी और हम अपने जीवन में इस उपहार को बढ़ाएंगे जब हम उसकी प्रभाव पर अमल करेंगे। सबसे जरूरी हम उन्हें पिता और पुत्र का साक्षी महसूस करेंगे। जब मैं जवान महिला थी, एक युवक के एक सम्मेलन में उपस्थिति थी, आत्मा ने मुझे पुनर्स्थापित सुसमाचार की गवाही दी। सैक्रमेंट सभा की तैयारी में हमने गाया द स्पिरिट ऑफ गॉड। मैंने तो ये गीत कई बार सैक्रमेंट सभाओं में गाया था, मगर इस अवसर पर शुरुआत के पंक्ति से ही मैंने आत्मा को महसूस किया। जिस समय हमने द लेटर डे ग्लोरी बिगिंस टू कम फोर्थ गाया, मैं जानता था कि ये अच्छे प्रगति गीत से ज्यादा थे, सुंदर सच्चे थे। ये पवित्र आत्मा ने मुझसे पुष्टि की है कि परमेश्वर जो पिता है जीवित है। यीशु मसीहा हमारा उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता है। वो धरती पर आया समय के सर्वोच्च बिंदु के समय हमें हमारे पापों से प्रायश्चित दिलवाने के लिए, और वो फिर आएगा। सुसमाचार के विषय में ये और उन अन्य बातें जो मैं गवाही की हिस्सा है। यीशु मसीह के नाम से आमीन।
कई साल पहले सुबह के वक्त मैं कुस्कू परो, जो एंडीज पहाड़ों के बीच है, की पतली गलियों से गुजर रहा था, जब मैंने वहां एक देहाती वासी को इस सड़क पर चलते देखा। वो कद से बड़ा आदमी नहीं था, पर एक काफी भारी चलने की लड़कियों का बोझ पीठ पर लादा जा रहा था। वो बोरी उसके कद के बराबर की थी। उसका भार शायद उसके वजन के बराबर था। उसने बोरी को रस्सी से जकड़ रखा था, जो बोरी के नीचे से घिर रही थी और उसके माथे के सामने से। रस्सी को उसने कस के सर के दोनों ओर पकड़ रखा था। सर को कटने से बचाने के लिए उसने माथे पर रस्सी के नीचे एक कपड़े का चिथड़ा रखा था। बोझ के नीचे वो झुक कर धीमे धीमे मुश्किल से चल रहा था। वो आदमी लकड़ियों को बाजार में बेचने ले जा रहा था। आम दिन में वो शायद एक या दो या तीन चक्कर मारता होगा उसी समान उलझन वाला बोझ पहुंचाने के लिए। उसे झुकते हुए शरीर की याद, रास्ते पर कशमकश करते हुए सालों के गुजरने पर भी प्रभावशाली बनी है। कितनी बोझ वो कितने सालों तक उठाएगा? जिंदगी हम सभी पर बोझ डालती है, कुछ हल्के कुछ निर्दयी। लोग हर दिन ऐसे बोझों के नीचे कुचले जाते हैं। हम में से काफ़ी लोग ऐसी चक्की में हाथापाई करते हैं। ये हृदय और शरीर पर भारी हो सकते हैं। ये चिंतातुर, अत्याचारी और थकाऊ हो सकते हैं और कई साल चल सकते हैं। आमतौर पर हमारे बोझ तीन स्रोतों से आते हैं। कुछ बोझ हमारे अपने अपने प्रदेश के हालातों पर निर्भर हैं। बीमारी, शारीरिक बेबसी, तूफान और भूकंप कभी कभी हमारे किसी दोष बगैर आते हैं। हम इन विपत्तियों के लिए तैयारी कर सकते हैं और कभी कभी पूर्वानुमान भी कर सकते हैं, पर सामान्य रूप से जीवन के दरमियान हम सब ऐसी कुछ चुनौतियों का सामना करेंगे। और कुछ बोझ हैं जो हमारी गलती जो दूसरों की गलती द्वारा थोपे जाते हैं। दुर्व्यवहार, लतें और स्वार्थ घर को सब बना सकते हैं, पर निर्दोष परिवार के लिए सदस्यों के लिए पृथ्वी पर स्वर्ग नहीं है। पाप, अत्याचार बोझ की से लदे हुए बलि जीवन की राहों में छोड़ जाते हैं। कम गंभीर दुष्कर्म जैसे गपशप दूसरों को कष्ट पहुंचाते थे। हमारी खुद की गलतियां हमारे कुछ समस्याओं की जड़ है। सबसे भारी बोझ जो हम डाल सकते हैं वो हम पर पाप का है। हम सभी को वो अफसोस, पछतावा और दर्द पता है जो प्रभु का आज्ञा पालन न करने से आता है। बोझ जो भी आए प्राकृतिक वजहों से या औरों के दुर्व्यवहार से या हमारी गलतियों से, हम सब स्नेही स्वर्गीय पिता के बच्चे हैं जिनकी हमारे अनंत विकास और प्रगति की योजना के अनुसार उन्होंने हमें दुनिया में भेजा है। हमारे व्यक्तिगत अनुभव हमें उनके पास लौटने के लिए तैयार कर सकते हैं। जो मुश्किलें और पीड़ा हमें नसीब हो, जितनी भी कठिन हो, सिर्फ एक छोटे क्षण के लिए होगी, और फिर अगर हम उसे अच्छी तरह से सहेंगे, ईश्वर हमें स्वर्ग में उठाएंगे। हमें जो मुमकिन सब करना चाहिए अपना भार अच्छी तरह से उठाने के लिए, जितने भी वक्त के लिए हमारा छोटा क्षण चले। भार हमें मौका देते हैं उन नीतियों को पालने का जो हमें शुद्ध बनाएंगे। वो निमंत्रण देते हैं पवित्र आत्मा के प्रभाव के सामने झुकने के लिए और स्वाभाविक इंसान को परे करने के लिए, एक संत बनने के लिए प्रभु ईसा मसीह की क्षतिपूर्ति द्वारा, और एक बच्चे जैसे बनने के लिए जो आज्ञाकारी, विनम्र, धैर्यवान, प्रेम से भरा, सब बातों में प्रभु के सामने समर्पण करने के लिए तैयार, वैसे ही जैसे एक बच्चा पिता को समर्पण करता है। इस तरह बोझ आशीर्वाद बनते हैं। अक्सर ये आशीर्वाद आसानी से नजर नहीं आते, उन्हें समझने में वक्त लगता है। चार उदाहरण ये समझाने में सहायता देंगे। पहले एडम को कहा गया था, जमीन को तुम्हारे लिए शापित किया गया है, मतलब उसकी भलाई के लिए, और तुम्हारे चेहरे के पसीने द्वारा तुम रोटी खाओगे। परिश्रम ये एक निरंतर बोझ है, पर वो एक निरंतर आशीर्वाद भी है हमारी भलाई के लिए, क्योंकि वो पाठ पढ़ाते हैं जो हम सिर्फ अपने चेहरे के पसीने के द्वारा सीख सकते हैं। दूसरा, आल्मा ने समझाया कि गरीबी और पीड़ा ने जोरम के लोगों को सच में विनम्र बनाया था, और उस पीड़ा ने उन्हें सुसमाचार सुनने के लिए तैयार किया था। आल्मा ने कहा, तुम इस कारण धन्य हो कि तुम्हें जबरदस्ती विनम्र बनाया गया है। हमारी आर्थिक चुनौतियां भी शायद हमें प्रभु की वाणी सुनने के लिए तैयार करेंगी। तीसरी, उनकी लंबी दौरान की युद्ध की वजह से बहुत निफाय और लेमन के लोगों के दिल पीड़ा की वजह से नम्र हुए थे, इतने कि वो ईश्वर के सामने बड़ी गहरी विनम्रता के साथ झुके। राजनीतिक अशांति, सामाजिक दंगा और दुनिया के कुछ स्थानों में आधुनिक गरियंतुन डाकू हमें इन सामाजिक तूफानों से स्वर्गीय आश्रय पाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। चौथा, जोसेफ स्मिथ को कहा गया था कि उसने सही गई कई साल से शत्रुओं के हाथ भयानक बातों द्वारा उसे अनुभव मिलेगा, और वो सभी उसके भलाई के लिए होगी। जो पीड़ा हम दूसरों के दुर्व्यवहार की वजह से सहते हैं, वो एक मूल्यवान पर दर्दनाक विद्यालय है खुद का बर्ताव सुधारने के लिए, और हमारे खुद के बोझ उठाने से हमें सहानुभूति का एक तालाब निर्माण होता है। अपोस्टल पॉल ने सिखाया कि हम एक दूसरे के बोझ उठाने चाहिए ताकि हम ईसा मसीह के कानून पूरा कर पाए। एक दूसरे के बोझ उठाने चाहिए ताकि वो हल्के हो पाए। शोक जताने वालों के साथ शोक जताना चाहिए, उन्हें आराम पहुंचाना चाहिए जिन्हें आराम की जरूरत है। बपतिस्मे के वचन रखने से हमारे बोझ हल्के होते हैं। वो ऐसी सहायता दूसरों को देते हैं पवित्र स्थान पर खड़े हैं। ये समझाते हुए मसीहा ने सिखाया, हमने आपको कब भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा और आपको जल दिया? आपको कब अजनबी देखा और आश्रय दिया, या नंगा और कपड़े पहनाए? हमने आपको कब बीमार देखा और आपके पास आए? और राजा उनसे कहेगा, वास्तव में मैं तुमसे कहता हूँ, जब तुमने मेरे भाइयों में से किसी एक तुच्छ भाई को वो किया, तुमने वो मुझे किया। इन सभी बातों में उद्धारकर्ता हमें पोषण देने वाली शक्ति और सहारा देता है, और अपने समय में मुक्ति देता है। जब एल्मा और उसके साथी नोवा की सेना से भाग के निकले, उन्होंने हिलम नाम का बस्ती बनाई। उन्होंने वहां सफलता पाई। बिना कोई संकेत लेमन की सेना ने उन्हें गुलाम बनाया। प्रभु के अलावा कोई भी उन्हें विहार नहीं कर सकता था। वो वहाई जल्द नहीं आए, उन पर काम लादने लगे, उन्हें प्रार्थना करने पर मृत्यु की धमकी दी। फिर भी आलमा और उसके लोगों ने उनके दिल ईश्वर की ओर खोले और उन्होंने उनकी मनोकामना जानी। उनकी भलाई और बपतिस्मे की प्रतिज्ञा का आज्ञा पालन करने से धीमे धीमे उन्हें रिहाई मिली। प्रभु ने उनसे कहा, मैं तुम्हारे कंधों पर लादा हुआ बोझ हल्का करूंगा, इतना कि तुम उसे महसूस भी नहीं कर पाओगे। इसलिए ये करूंगा मैं कि इसके बाद तुम मेरी गवाही बन पाओ, तुम्हें यकीन हो कि प्रभु उसके लोगों के साथ होता है उसके पीड़ा के समय। फिर आलमा और उसके बंधुओं पर लादे हुए बोझ हल्के हुए। प्रभु ने उन्हें शक्ति दी ताकि वो उनके बोझ आसानी से उठा पाए। अब उन्होंने खुशी और बड़े सब्र के साथ प्रभु की इच्छा पूरी की। उनकी भक्ति इतनी महान थी कि प्रभु की वाणी उन्हें फिर सुनाई दी कहते हुए कि तुम शांति ग्रहण करो, क्योंकि कल तुम्हें मैं गुलामी से मुक्त करूंगा। दया से ईश्वर का बेटा हमें पापों की गुलामी से रिहाई प्रदान करता है, जो सबसे भारी बोझ है जो हम उठाते हैं। अपनी क्षतिपूर्ति के दौरान उन्होंने पीड़ा सही ताकि वे उनके लोगों की पाप ले पाए, ताकि वो उनकी गलतियों को मिटा पाए उनके मुक्तिदाता की शक्ति से। मसीहा ने ये इन चीज़ों को सभी लोगों के लिए सहा ताकि उन्हें सहना नहीं पड़े अगर वो सिर्फ प्रायश्चित करें। जब हम प्रायश्चित करते हैं, हमें माफ़ी सिर्फ उन सहायता से मिलती है जो उद्धारकर्ता देता है। निश्चित मुझे पेरू का वो आदमी याद है जो लकड़ियों की भारी बोझ कशमकश करता हुआ चल रहा था। वो हम सभी का नमूना है, बोझ के नीचे हथापाई करते हुए। जैसे हम आज्ञा पालन करते हैं, वे हमें शक्ति देते हैं। प्रायश्चित करने पर हमें माफ करते हैं और हमें शांति और सुख के सदविचार से आशीर्वाद देता है। हमें अपने आप को खुशी और तहविया से प्रभु को अर्पण करें। मैं प्रार्थना करता हूँ ईसा मसीह के नाम से, आमेन।
The choir and गायक मंडली और सभा अब साथ मिलकर गाएगी। We thank thee, O God, for a prophet. गीत की समाप्ति पर ब्रदर रसल टी ऑस्कॉट रविवार पाठशाला के जनरल प्रधान से हमसे बातें करेंगे, जिसके बाद हम एल्डर डेविड ए बेडना जो बारह के परिषद के हैं से सुनेंगे। गायक मंडली फिर गाएगी My Heavenly Father Loves Me।
This is the 179th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
One day,
जब मैं मिशन प्रेसिडेंट था, एक दिन मैं अपने सबसे बड़े बेटे से फोन पर बात कर रहा था. वो एक डॉक्टर है और काम से हॉस्पिटल जा रहा था. हॉस्पिटल पहुंचने पर उसने कहा, पिताजी आपसे बात करके अच्छा लगा, लेकिन अब मुझे कुछ जाने बचानी हैं. मैं मेरा बेटा बच्चों का डॉक्टर है जिन्हें जानलेवा बीमारियां होती हैं. सही तरह से बीमारी को पहचान कर और उसका इलाज करके वो एक बच्चे की जान बचा सकता है. मैंने अपने मिशनरी से कहा कि उनका काम भी बचाना जान बचाना है, लोगों की धार्मिक जिंदगी जिन्हें वे पढ़ाते हैं. प्रेसिडेंट जोसेफ स्मिथ ने कहा, सच्चाई को अपनाने से हमें मोक्ष मिलता है. मोक्ष मिलता है केवल इसलिए नहीं क्योंकि हमने सच्चाई सिखाया, बल्कि कि हमने उसे अपनाया और उस पर काम किया. हमारा बेटा अपने दवाइयों के ज्ञान से जाने बचाता है. चर्च के मिशनरीज और टीचर्स दूसरों को गॉस्पल सिखाने से लोगों की धार्मिक जिंदगियां बचाते हैं. जब मिशनरीज और टीचर्स स्पिरिट का सहारा लेते हैं, तब वे सही सिद्धांत सिखाते हैं. सीखने वालों को सिद्धांत का पालन करने के लिए आमंत्रित करते हैं और उनका आशीर्वाद बताते हैं. एल्डर डेविड बर्नार ने 3 बातों के बारे में सिखाया, सही सिद्धांत, दूसरा कर्म का आमंत्रण और तीसरा वादे किए गए आशीर्वाद. प्रीच माय गॉस्पल पुस्तिका मिशनरीज की मदद करती है ताकि वे सही सिद्धांत सिखाएं, लोगों को उसका पालन करने के लिए आमंत्रित करें और उससे वादे किए गए आशीर्वादों को पाएं. टीचिंग नो ग्रेटर कॉल पुस्तिका से माता पिता और शिक्षकों को इसी तरह मदद मिलती है जिस तरह प्रीच माई गॉस्पल मिशनरीज को मदद करती है. प्रेसिडेंट थॉमस एस मॉन्सन हमें अपने बचपन की संडे स्कूल टीचर लूसी गर्स के बारे में बताते हैं. एक संडे सिस्टर गर्स ने अपने क्लास को आमंत्रित किया कि वह अपने पार्टी फंड को एक लड़के को दे दें जिसकी माँ चल बसी थी. प्रेसिडेंट मॉन्सन ने अपने मैनुअल बंद करके अपने शिष्यों को सेवा करने का मौका दिया. सिस्टर गर्श ने अपने लेसन की तैयारी मैनुअल से की थी, लेकिन जब उन्हें प्रेरणा मिली तो उन्होंने मैनुअल बंद किया और शिष्यों को काम करने के लिए आमंत्रित किया. प्रेसिडेंट मॉन्सन ने सिखाया है कि गॉस्पल सिखाने का मकसद ये नहीं है कि दूसरों को जानकारी से भरा जाए, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रेरित करना है कि उस गॉस्पल सिद्धांत को वे उसका पालन करें. जब मोरोनाई प्रॉफिट जोसेफ के सामने प्रकट हुआ तो उन्होंने प्रॉफिट को केवल सही सिद्धांत ही नहीं सिखाया, बल्कि उनसे कहा कि भगवान ने आपको ये काम करने के लिए दिया है और उनका नाम पूरी दुनिया में जाना जाएगा. सभी माता पिता और गॉस्पल के टीचर्स भगवान के दूत हैं. सिस्टर गर्ल्स और मोरोनाई की तरह हम सभी आने वाले प्रॉफिट्स को नहीं सिखाते हैं, लेकिन सब हम चर्च लीडर्स को सिखा रहे हैं, इसलिए हम सही सिद्धांत सिखाते हैं. भगवान के दिए गए कर्म को करने के लिए आमंत्रित करते हैं और फिर आशीर्वादों की गवाही देते हैं. मुझे याद है जब एक मैं छोटा लड़का था और एक प्राइमरी मीटिंग के लिए चर्च जा रहा था. जब मैं पहुंचा, मुझे आश्चर्य हुआ कि सभी माता पिता एक स्पेशल प्रोग्राम के लिए आए हुए थे. फिर मुझे याद आया, मैं इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया हुआ था, लेकिन मैं उसकी तैयारी करना भूल गया था. जब मेरी बारी आई, मैं खड़ा हुआ, लेकिन मेरे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला. मुझे कुछ भी याद नहीं था, इसलिए मैं बस खड़ा रहा, फिर बैठा और जमीन घूरता रहा. उस अनुभव के बाद मैंने निश्चय किया कि मैं कभी भी किसी चर्च मीटिंग में नहीं बोलूंगा, और कुछ समय तक मैंने इस निश्चय पर अटल रहा. फिर एक संडे सिस्टर लिडिया स्टिलमैन, एक प्राइमरी लीडर, मेरे बगल में आई और मुझे अगले हफ्ते एक छोटा सा टॉक देने को कहा. मैंने कहा, मैं टॉक्स नहीं देता. उन्होंने फिर कहा, मैं जानती हूँ, लेकिन ये तुम टॉक दे सकते हो क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करूँगी. मैंने फिर से मना किया, लेकिन उन्होंने मुझ में इतना विश्वास दिखाया कि मैं उन्हें मना नहीं कर पाया. मैंने टॉक दिया. वो अच्छी महिला भगवान के दूत थीं और भगवान ने मुझे ये काम करने के लिए दिया था। उन्होंने मुझे सिखाया कि जब कॉल आती है तो उसको स्वीकारते हैं भले कितना भी अक्षमता लगे। मरोनाई की तरह उन्होंने देखा कि मैं तैयार था जब टॉक देने का समय आया। उन प्रेरित टीचर ने मेरी जिंदगी बचाई। जब मैं एक युवा था ब्रदर पीटरसन नाम के एक रिटर्न मिशनरी संडे स्कूल टीचर क्लास के टीचर थे। हर हफ्ते वे बोर्ड के नीचे वाले कोने से ऊपर वाले कोने तक एक तीर बनाते थे और उसके ऊपर लिखते थे ऊंचा लक्ष्य रखो। जो कोई सिद्धांत वो सिखाते थे वह हमें और ज़्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित करते थे। वो तीर और शब्द ऊंचा लक्ष्य रखो से मुझे पाठ मिला। ब्रदर पीटरसन ने मुझे एक अच्छा मिशनरी मिशन करना, पढ़ाई में और अच्छा करना और अच्छे से अच्छी नौकरी पाने के लिए प्रेरित किया। ब्रदर पीटरसन चाहते थे कि हम काम करें। उनका लक्ष्य था कि हम सोचें, महसूस करें और गॉस्पल के सिद्धांतों को जीने के लिए काम करें। उनकी शिक्षा से मेरी ज़िंदगी बचाई गई। जब मैं 19 साल का था मुझे टहीटी मेन मिशन सर्व करने के लिए बुलाया गया जहां मुझे दो भाषाएं सीखनी थीं, फ्रेंच और टहीशियन। मिशन के शुरुआत में ही मैं हार मानने लगा क्योंकि ये मुश्किल था। जब मैं फ्रेंच बोलता था तो लोग मुझसे टहीशियन में बोलते थे और जब मैं टहीशियन में बोलता था लोग मुझसे फ्रेंच में बोलते थे। मैं हार मानने वाला था। फिर एक दिन जब मेन मिशन होम के लॉन्ड्री रूम के पास से जा रहा था तो मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। मैं मुड़कर देखा कि एक भूरे बालों वाली टहीशियन महिला खड़ी थी और मुझे बुला रही थी। उनका नाम था तुपुतियाता मू। वो केवल टहीशियन जानती थी और मैं केवल इंग्लिश जानता था। मैं पूरी तरह से नहीं समझ पाया कि वे मुझसे क्या कह रही थी, लेकिन इतना समझ सका कि वो मुझसे कह रही थी कि रोज लॉन्ड्री रूम आओ ताकि वो मुझे टहीशियन सिखा सकें। मैं रोज उनके साथ टहीशियन की प्रैक्टिस करता था जब वो कपड़े सी रही प्रेस कर रही होती थी। पहले मुझे लगा कि ये मुझे मदद नहीं कर पाएगी, लेकिन धीरे धीरे मैं उन्हें समझने लगा। हर बार जब मिलते थे तो मुझ में दोनों भाषा सीखने का पूरा विश्वास दिखाती थी। सिस्टर मू ने मुझे टहीशियन सीखने में मदद की, लेकिन उन्होंने मुझसे इससे कहीं ज़्यादा सिखाया। असल में वो मुझे गॉस्पल का पहला सिद्धांत सिखा रही थी, प्रभु में विश्वास। वे मुझे सिखा रही थी कि अगर मैं प्रभु में विश्वास रखूं तो नामुमकिन काम भी कर सकता हूं। उन्होंने मेरा मिशन ही नहीं बचाया बल्कि मेरी ज़िंदगी बचाई। सिस्टर सिलमन, ब्रदर पीटरसन और सिस्टर मू ने सिखाया प्रोत्साहन के साथ, सहने के साथ, कोमलता और नम्रता के साथ और सच्चे प्यार, नेकी और शुद्ध ज्ञान के साथ धार्मिकता बढ़ती है। वे सदाचार के साथ सिखाते थे, इसलिए होली गोस्ट उनके साथ रहता था। इन महान शिक्षकों से मुझे अपनी टीचिंग के बारे में सवाल पूछने के लिए प्रेरित किया है। पहला, एक शिक्षक होने के कारण क्या मैं अपने आप को भगवान के दूत के रूप में देखता हूँ? दूसरा, क्या मैं तैयारी करके शिक्षा सिखाता हूँ? तीसरा, क्या मैं रेस्टोरेशन के सही सिद्धांत पर जोर डालता हूँ? चौथा, जिन्हें मैं सिखाता हूँ क्या वे मेरे उनके लिए परमपिता प्रभु के प्यार को महसूस कर सकते हैं? पांच, जब मुझे प्रेरणा मिलती है क्या मैं मैनुअल बंद करके उनकी आँखों, कान और दिलों को भगवान की ओर खोलता हूँ? छठा, क्या मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ उनके लिए भगवान के काम को करने के लिए? सातवा, क्या मैं उनमें इतना विश्वास दिखाता हूँ कि वो मना नहीं कर सकते? आठ, क्या मैं उन्हें उन आशीर्वादों के बारे में बताता हूँ जो सिद्धांत मैं सिखा रहा हूँ उसका पालन करने से? सीखना और सिखाना भगवान के राज्य में इच्छाधीन कार्य नहीं है। इन्हीं के द्वारा गॉस्पल पृथ्वी पर फिर से आया है और इन्हीं के द्वारा अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। इनके द्वारा हम अपने गवाही प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी अज्ञानता में नहीं बचाया जा सकता। मैं जानता हूं कि भगवान जीते हैं। मैं गवाही देता हूं कि ईसा ही मसीह हैं। मैं गवाही देता हूं कि प्रॉफिट जोसेफ स्मिथ ने सच को सिखाया फिर सिखाया, जिसके द्वारा गॉस्पल पृथ्वी पर फिर से है। गॉस्पल ने जोसेफ ने एक के बाद एक सवाल किए, दिव्य उत्तर प्राप्त किए और फिर उन्हें हमें बच्चों को सिखाया। मैं जानता हूं कि प्रेसिडेंट मॉन्सन आज प्रभु के प्रॉफेट हैं और जोसेफ की तरह वे सीखते हैं और हमें सिखाते हैं और जिंदगियां बचाते हैं, जिंदगियां ईसा मसीह के नाम में, आमीन।
In 1833 में जोसेफ स्मिथ ने ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त किया कि वो अपने परिवार को व्यवस्था में रखे। इस ईश्वरीय ज्ञान में एक खास मुहारा में मेरे संदेश से होगा, घर पर आज्ञाकारी रहना और चिंतित रहना। मैं तीन तरकीबें बतलाऊंगा जिससे हमें से हर एक व्यक्ति अपने घरों पर और चिंतित बन सकते हैं। मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं कि तुम अपने कानों से जो सुनते हो और कहते हो से देखो और दिलों से महसूस करो। हम और आज्ञाकारी और चिंतित होना शुरू कर सकते हैं अगर घर में लोगों को बतलाने से कि हम उनसे प्यार करते हैं। हमें केवल हृदय से और प्यार प्रकट करना चाहिए। भाइयों और बहनों, कब आपने आखिरी बार अपने जीवन साथी को अपने बाहों में लेकर उनसे मैं तुमसे प्यार करता हूं कहा था? माता पिता, कब आपने आखिरी बार अपने बच्चों से कहा था? बच्चों, कब आखिरी बार आपने माता पिता को बताया था कि आप उनसे प्यार करते हैं? हम सब ये पहले से जानते हैं कि जिन लोगों से हम प्यार करते हैं उन्हें हमें बतलाना चाहिए, पर जो हम जानते हैं हमेशा करते नहीं हैं और दिखलाते नहीं हैं। हम शर्म महसूस करते हैं। उद्धारकर्ता के चेला होने के कारण हमें सिर्फ और जानते हैं और कोशिश नहीं करना है, बल्कि हमेशा जो हम जानते हैं कि सच्चाई करना है और बनाना चाहिए। हम वो मोहरा याद करना है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ सिर्फ एक शुरुआत है। हमें प्यार को दोनों प्रकट और स्पष्ट रूप से दिखलाना चाहिए। प्रधान मोचन ने हाल ही में सलाह दिया, ज़्यादातर हम ये कल्पना करते हैं कि जो है उनको जानना चाहिए कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं, पर हमें कभी कल्पना नहीं करना चाहिए, हमें उन्हें जाहिर करना चाहिए। जो दया के शब्द हमने कहे या जो अपनाने हमने दिखलाए, हम उनके कारण हम कभी दुखी नहीं होंगे, बल्कि हमारे दुख तब तक आएंगे अगर कभी कभी सेक्रेमेंट मीटिंग के बयान के द्वारा हम ऐसा व्यक्ति सुनते हैं जो कहते हैं, मैं जानता हूँ मैं अपने पति या पत्नी के अक्सर ये नहीं कहता कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ। आज मैं बयान करना चाहता हूँ कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ, पर यह ऐसा प्रदर्शन शायद ठीक होगा, पर मैं जब ऐसे सुनता हूँ मुझे ठीक नहीं लगता, क्योंकि ये सब हमें घर में बतलाना चाहिए और कहना चाहिए। प्यार और उचित व्यवस्था से बीच का रिश्ता भर भर धर्मशास्त्र में प्रदर्शित होता है। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो, मेरे आदर्श को का पालन करो, जैसे ही प्रभु से और के लिए प्यार सदैव उनके मार्ग पर चलने से प्रमाणित हुआ है, इसी तरह आपने पति पत्नी माता पिता बच्चों के प्रति प्यार भी हमारे सोच हमारे बोली और हमारे कर्मों से जाहिर होता है। एक पति पत्नी एक माता पिता या एक बच्चे द्वारा प्यार के सुरक्षा और स्थिर को महसूस करना एक भरपूर आशीर्वाद है। इस तरह का प्यार परमेश्वर में विश्वास करता और कायम रखता है। इस तरह का प्यार ताकत का स्रोत है और अंधेरों को भगाता है। इस तरह का प्यार हर मनुष्य के आत्मा की इच्छा है। हम घर पर और आज्ञाकारी और चिंतित बन सकते हैं प्यार प्रकट करने से और हमेशा उसे दिखलाने से। दूसरा बयान दीजिए और उसके अनुरूप आचरण कीजिए। हम घर पर आज्ञाकारी और चिंतित हो सकते हैं अगर हम बयान देते हैं और उनको और पवित्र आत्मा से देते हैं। बयान को लंबा होने या बढ़िया होने की ज़रूरत नहीं, और हमें महीने और के परिवार पहले रविवार का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। सच्चाई बयान करने के लिए अपने घर के दीवारों के अंदर ही हम शुद्ध गवाही दे सकते हैं। भाई और बहनों, आखिरी बार कब तुमने अपने साथी से बयान को बांटा था? माता पिता, आखिरी बार कब तुमने अपने सच्चाई के ज्ञान को अपने बच्चों से बयान किया था? और बच्चों, आखिरी बार तुमने कब अपने माता पिता और परिवार से बयान दिया था? हम सब पहले से जानते हैं कि हमें उनसे बयान बांटना है जिनको हम ज़्यादा प्यार करते हैं, पर जो हम जानते हैं हमेशा हमारे कार्यों में जाहिर नहीं होता। हम निसंदेह तकलीफें या थोड़ा उपयुक्त भी महसूस कर सकते हैं। उधारकर्ता के चेला होने के कारण नाते हम सिर्फ और जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमें हमेशा जो हम जानते हैं कि सच्चा है करना चाहिए और बेहतर होना है। हमें याद करना है कि हृदय से बयान देना सिर्फ एक शुरुआत है। हमें बयान को बांटना है, इच्छा से बोलना है, और सबसे महत्वपूर्ण, हमें इसे जीवन का भाग बनाना है। हमें अपने बयान को घोषित करना है और जीना है। बयान और उचित व्यवहार के बीच का रिश्ता उधारकर्ता के शिक्षण के द्वारा सामने लाया गया, जब उन्होंने कहा कि वो जो आत्मा उनसे बयान करता है वो चाहते हैं कि वो लोग वैसा ही करें। सुसमाचार की सच्चाई का बयान हमारे बोली और कर्मों से जाहिर होता है, और हमारे बयान का प्रचार और पालन करना पूरे बल से करना चाहिए। हमें सुसमाचार की सच्चाइयों को बयान करने और जीने के लिए मौकों को तैयार करना और ढूंढना चाहिए। एक बयान वो है जो हम अपने मन और हृदय में पवित्र आत्मा की गवाही द्वारा जानते हैं कि सच्चा है। जब हम सच्चाई को घोषित करते हैं, प्रेरित करते हैं, हम पवित्र आत्मा को आमंत्रित करते हैं हमारे शब्दों के सच्चाई की पुष्टि करने में। शुद्ध शक्ति से की शक्ति से आती है, पवित्र आत्मा से आती है। शक्ति सिद्ध उदाहरण और बयान की स्थिरता को महसूस करने एक पति और पत्नी, एक माता पिता, एक बच्चे से एक भरपूर आशीर्वाद है। ऐसा बयान विश्वास को अटल बनाता है और निर्देशन प्रदान करता है। ऐसा बयान रोशनी उत्पादन एक दुनिया में जहां अंधेरा तेजी से बढ़ता है। ऐसा बयान आनंद, दृश्य और ना खत्म होने वाली शांति का स्रोत है। हम घर पर भी आज्ञाकारी और चिंतित बन सकते हैं बयान देने से और हमेशा उसे जीने से। तीसरा, हमेशा एक जैसा करना। जब मेरे लड़के बड़े हो रहे थे, हमारे परिवार वही करता था जो आपने किया है और जो आप अब कर रहे हैं। हम नियम, परिवार प्रार्थना, धर्मशास्त्र अभ्यास और फैमिली होम इवनिंग करते थे। अब मुझे निश्चय है कि मैं वो जो करने वाला हूँ वो आपके घर में शायद नहीं होता होगा, लेकिन हमारे घर पर हुआ था। कभी कभी बाहर बहना और मैं सोचते थे कि क्या हमारी कोशिशें कुछ मुनाफे कर रही थी या नहीं। घड़ी घड़ी धर्मशास्त्र अनुवाक्य को पढ़ते समय चिल्लाना होता था, जैसे वो मुझसे छू रहा है, उसे मुझे देखने से रोकिए, वो मेरा सांस ले रहा है।
It must have happened in your home if you're laughing.
आपके घर पे भी ऐसा हुआ है अगर, क्योंकि आप हंस रहे हैं। बेनर और मैं, सिस्टर बेनर और मैं उत्तेजित हो जाते थे
क्योंकि हमने इतने मेहनत से जो नेक आदतें उनमें संजोए थे उसी समय वो आत्मिक परिणाम को नहीं उत्पन्न करते थे जैसे हम चाहते थे और आशा करते थे। आज अगर तू मेरे बालिक बेटों से पूछोगे क्या वो याद करते हैं परिवार प्रार्थना धर्मशास्त्र फैमिली होमिंग के बारे में, मैं विश्वास करता हूँ और जानता हूँ वो कैसे जवाब देंगे। वो कहेंगे कि वो याद करते हैं कि एक परिवार में वो एक जैसा करते थे। बहन बेरना और मैंने सोचा कि अपने बेटों को एक बात के अंश या एक विशेष धर्मशास्त्र सिद्धांत समझाने में सहायता करना होगा, पर हर समय जो हम अध्याय करते या प्रार्थना करते या साथ सिखाते थे मिलता था। हमारे आशाएं और कार्य की स्थिति शायद हमारा शब्द बड़ा बात था, एक बात जो हम उस समय पूर्ण रूप से समझ नहीं पाए। मेरे दफ्तर में गेहूं के खेत का एक सुंदर चित्र है। ये चित्र एक विशाल संजय है अलग अलग चित्रों का, उनमें से एक भी अलग करके देखे जाए तो बहुत दिलचस्प है। वास्तव में अगर तुम कैनवस के कारब खड़े होंगे तुम्हें बहुत सारे कलर दिखाई देंगे। हालांकि जब तुम आशिष्टता से कैनवस से दूर जाओगे सारी चित्र को साथ मिलेंगे एक विशाल गेहूं के खेत को लेकर, इस तरह वो एक साथ दिखाई देंगे। हर एक परिवार प्रार्थना परिवार धर्मशास्त्र अध्याय का समय और हर एक फैमिली होम इवनिंग हमारे हृदय के लिए कैनवस पर एक चित्रांकन है। कोई एक घटना बहुत प्रभावपूर्ण या घर नहीं होगा, मगर जैसे पीले और सोने और बुरे रंग के पेंट की धरियां एक दूसरे को पूर्ण करती है, इसी तरह हमारे परिवार भी एकता से हो जाएगा और हम समझेंगे और पवित्र आत्मा को सुनेंगे। हमें अच्छाई करना है और सुसमाचार को जानना है और छोटी छोटी चीजों से बड़ी चीज आती है। हमें हमेशा ऐसा करना है और परिवार में एकता से रहना है। अपने घरों में स्थिर रहना एक और कारण जरूरी है। उद्धारकर्ता के कई कठोर वचन धुनियनों के लिए था। यीशु ने अपने चेलों को शास्त्री और फरीसी के बारे में चेतावनी दी, उनके जैसे काम मत करो क्योंकि वो कहते हैं जो कहते हैं वो करते नहीं है। ये कड़ी चेतावनी है जब हमें सलाह दिया गया है प्यार करकट करना और बयान देना। हमारे जीवनों के ढोंग को और अच्छी तरह समझा जाता है और भरी आपत्ति का कारण होता है। प्यार के सार्वजनिक बयान बोलना अगर प्यार के निजी क्रियाघर पर मौजूद नहीं हो सकता है। जब हम प्रभु की सहायता ढूंढते हैं और उसकी शक्ति से हम आशिष्टता को कहते हैं और जो करते हैं के अनुसार काम करेंगे। झूठी बयान हमें नहीं देना चाहिए, हमें सच्चाई से बयान देना चाहिए कि हमारे घर में हमारे पति पत्नी और बच्चे उनसे सुने और उसे महसूस करें। ऐसा हो कि हर एक पति और पत्नी, हर एक बच्चा, हर एक माता पिता को आशीष मिले, प्यार एक दूसरे से बांटे में हासिल करने में बयान दें और उसे सिद्ध उद्धार हो
और उन छोटे चीजों में स्तर कायम करने जो इतना महत्वपूर्ण रखता है। इसका खोज में हम अकेले नहीं हैं, छोड़ दिए गए हैं। हमारे स्वर्ग पिता और उसका प्रिय पुत्र जीवित है। वो हमसे प्रेम करते हैं और हमारी परिस्थितियों को जानते हैं और वो हमारी सहायता करेंगे और भी आज्ञाकारी और चिंतित बनेंगे के लिए घर पर और हमारे घर पर प्रेम रहेगा अगर हम इन बातों को मानेंगे।
We will never be left alone.
Our हम अकेले नहीं है। पिता परमेश्वर जीवित है और यीशु मसीह जीवित है और वो हमारी मदद करेगा कि हम अपने परिवार में प्रेम से रहे। इस सच्चाई का मैं बयान देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
We are grateful to the Tabernacle Choir.
Tabernacle Choir को किए भारी है और उनके कंडक्टर सर ओगनेस की भी जो सुंदर संगीत के लिए जो उन्होंने आज सुबह प्रदान की है. हमारा अंतिम भाषण करता इस बैठक के लिए रहेंगे प्रेसिडेंट डीटर एफ उद्धव प्रार्थना अध्यक्षता प्रथम अध्यक्षता के दूसरे सलाहकार प्रधान उद्धव के टिप्पणी के बाद गायक पंडली गाएंगे कम कम इसेंस प्रार्थना फिर एल्डर क्लेट डब्ल्यू मास्क सत्र के द्वारा बोले जाएंगे और सम्मेलन टाल दी जाएगी शाम को 2 बजे तक.
My dear brothers and sisters,
मेरे प्यारे भाइयों बहनों,
it is wonderful to be with you this morning.
बहुत खुशी है तुम लोग से. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints बढ़िया जा रही है और विश्वास भर में प्रस्तुत हो रही है. वो लोग हमेशा रहेंगे जो गिरजाघर और उसके सदस्य का अशद और एक तरफ दृश्य देखते हैं. कई लोग हमारे बारे में सोचते हैं कि हम ईमानदार सहयोगी और मेहनती हैं. हम शायद उन लोगों की तरह जाने जाते हैं जो हर रविवार को 3 घंटे के लिए गिरजाघर जाते हैं, एक ऐसे जगह जहां सभी एक भाई या बहन है, जहां बच्चों के गीत के बोल होते हैं, बोलने वाले जानने पेड़ जो बच्चे जो सूरज की किरण बना जाते हैं.
Children who want to become sunbeams.
भाइयों और बहनों, उन सभी चीजों जिसके लिए हम जाना जाते हैं इस गिरजा के सदस्य के जैसे यीशु मसीह के डिसाइपल की तरह. मैंने पहले जो कॉन्फ्रेंस था किताब से बताया, ये इस तरह की सवाल की बारे में सोच रहा हूँ। आज मैं आपके बताना चाहूँगा कुछ सोच और प्रभाव जो मैंने प्राप्त किए हैं। पहला सवाल है, कैसे हम यीशु मसीह के सच्चे डिसाइपल बन सकते हैं? मुक्तिदाता ने खुद इसका जवाब दिया है गंभीर घोषणा से, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो, मेरे नियमों को पालन करो, वो ही सच्चा डिसाइपल है जो मसीह यीशु का ग्रहण करते हैं, उसमें चलते हैं। मगर कुछ लोगों के लिए ये समस्या हो सकती है, क्योंकि इतने सारे चीज़ों हैं जो हमें करना चाहिए और अन्य चीज़ों जो हमें ना करना चाहिए, कि उनको याद रखना और देखना कि भी एक चुनौती हो सकती है। एक आदमी की इच्छा विचार, वो जो उसके लिए ठीक है, जर जम लेती है और एक प्रस्त बन जाती है, और धीरे धीरे आनंद सिद्धांत खोज सकते हैं अच्छे विचार के भूल भुलैया में। ये थी मुक्तिदाता की आलोचना उन दिनों के धार्मिक सिद्धांतियों के, जिनके उन्होंने सख्त निंदा किया था, कानून के कई सौ चुड़े आंसू के परिवार करने के लिए, जबकि वो वजनदार विषयों को तर देते थे। तब हम कैसे इन वजनदार विषयों पर ध्यान दे सकते हैं? क्या एक कंपस है जो हमें अपने जीवन, सोच और कामों को सुधारने में मदद सकता है? एक बार भी मुक्तिदाता ने मार्ग प्रकट की है, जब उसने बड़ी आज्ञा के नाम देने को पूछा, वो हिचकिचा कर नहीं उनसे कहा, तुम परमेश्वर को अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण से अपने सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखो, बड़ी और मुख्य आज्ञा यही है। दूसरा मुख्य, तुम अपने पड़ोसी से अपने सम्मान प्रेम रखो। हमारे पास एक कंपस है जो निर्देश देता है, सिर्फ हमारे जीवन के लिए नहीं, मगर प्रभु के गिरजाघर के लिए भी, दोनों इस जीवन और दूसरे जीवन में, क्योंकि प्रेम मुख्य आज्ञा है। हम हमारे सभी चीजों और कार्यों से मुख्य होना चाहिए, और हम अपने परिवार, अपने गिरजाघर, नियुक्तियों और अपने जीवन अनुभव में करते हैं। प्रेम से कठिनाइयों और झगड़ों को सुलझाता जाता है और पारिवारिक संबंधों को। प्रेम वो शक्ति है जो दोस्ती, सहनशीलता और अंदर की शुरुआत करता है। वो जरूरी जलन को दूर करता है। प्रेम वो आग है जो हमारी जीवन को जोशीला बनाता है। हमें प्रेम ही इस चलना और बोलना चाहिए। जब हम पूर्ण रूप से समझ जाएंगे कि यीशु मसीह जैसे हमसे प्यार करता है, तब सभी गलत फहमियां निकल जाएंगे। हमारा जीवन मसीह के चेलों की तरह और खुशहाल हो जाएगा। हमारे जीवन नया अर्थ लेगा। आज्ञा हमारे लिए खुशी में बदल जाएगा। क्यों हमें परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए? परमेश्वर हमारे अनंत पिता ने वो पहला मुख्य आज्ञा नहीं दिया, क्योंकि हमें उनसे प्यार करना चाहिए। उनकी शक्ति और महिमा कम नहीं होती अगर हम उनके नाम अस्वीकार या अपवित्र करते हैं। उनका प्रभाव और राज्य पुराने समय से चला आ रहा है।
acceptance, approval, or admiration. No.
नहीं, परमेश्वर को ये जरूरत नहीं है कि हम उनसे प्यार करें, पर हाँ, हमें ये बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर से प्यार करें। हमारा प्यार जिस पर है निर्भर करता है कि हम क्या ढूंढते हैं। जो हम ढूंढते हैं निर्भर करता है हमारे सोच और कार्य। जो हम सोचते हैं वो करते हैं तय करता है कि हम कौन हैं और हम क्या बनेंगे। हम अपने स्वर्ग के माता पिता के प्रति रूप में राज्य गए हैं। हम परमेश्वर के आत्मिक बच्चे हैं। वो हमारे धार्मिक विरासत के भाग है। किसी और कैसे हम प्रेम करते हैं सिर्फ हमें व्यक्तियों की तरह रूप में नहीं देखते, वो हमें एक गिरजाघर के रूप में भी देखता है। प्यार हमें मसीह के डिसाइपल बनाता है। समय के जरूरत से प्रेम परम आनंद है। घोर दुख के बीच आदम के दिनों से आज तक तुम बुरे चीजों का प्रेम पाओगे। हम खुशहाली में तुम पाओगे अच्छे चीजों का प्यार। और सभी अच्छे वस्तुओं में है परमेश्वर। हमारे स्वर्ग पिता के ने हमें उन बच्चों को ज्यादा दिया है जितना कि हम नहीं जान सकते। उन्हें निर्देशन में महान यहोवा ने ये विशाल दुनिया बनाई जिसमें हम रहते हैं। परमेश्वर हमारे पिता हमारी देखभाल करता है, हमारे हृदय आनंद से भर देता है, हमारे मन में मूल्यवान सच्चाइयों डालता है, मुसीबत के समय हमें मार्ग दिखलाता है, खुश होता है जब हम खुश होते हैं। इन हमारे सच्चे प्रेरणाओं का जवाब देता है। वे अपने बच्चों को विशाल और आनंद जीवन का वादा करता है और हमारे लिए एक मार्ग बनाया और ज्ञान महिमा में प्रगत करते हैं जब हम पूर्ण आनंद पाएं। उन्हें हमसे अपना सब कुछ वादा किया है। अगर ये सब प्राप्त वजह नहीं स्वर्ग पिता के प्रेम करने के लिए, शायद हम पुरोहित जॉन के वाणी के सीख सकते हैं जिसने कहा, हम इसलिए उनसे प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। स्वर्ग के पिता क्यों हमसे प्रेम करते हैं? सबसे पवित्र पूर्ण रूप से सामने वाला प्रेम के बारे में सोच जिसके तुम कल्पना कर सकते हो। अब उस प्रेम को एक आनंद मात्र से बढ़ाए। हाँ, परमेश्वर के प्रेम का नाप तुम्हारे लिए। परमेश्वर की दृष्टि बाहर के रूप नहीं होती है। मैं वो विश्वास करता हूँ कि वो भी प्रभाव नहीं करता। जबकि हम आप हैं, परमेश्वर हमें पूर्ण रूप से प्रेम करता है। जबकि हम पूर्ण हैं, वो हमें पूर्ण रूप से प्रेम करता है। जबकि हम कोई होई कंपास के बिना महसूस करते हैं, परमेश्वर का प्रेम हमें पूर्ण रूप से चारा और घेर लेता है। वे हमें प्रेम करता है क्योंकि उन्हें हमारे लिए पवित्र शुद्ध किया। प्रेम की असमता बारे में, वो हम सबसे प्रेम करता है। वो सभी जिनमें कामियां हैं अस्वीकार किया है, जो आनंदी है, दुखित है, वो बर्बाद हो गए हैं। परमेश्वर का प्रेम इतना महान है कि वो घमंडी, स्वार्थी या दोष से भी प्रेम करता है। इसका मतलब है कि हमारे वर्तमान के स्थिति में वो देखते हुए हमारे लिए आशा है। चाहे जो भी हमारे कठिनाइयां हो, जो भी दुख हो, जो भी गलतियां, हमारे स्वर्ग के पिता अनंत तक दयालु और चाहता है कि हम हैं उनके करीब आए ताकि वो हमारे करीब आ सके। कैसे हम परमेश्वर के प्रति अपने प्यार बढ़ा सकते हैं? जबकि परमेश्वर प्रेम है, हम उनके जितने करीब जाएंगे उतनी अच्छी तरह हम प्रेम को कार्य अनुभव करेंगे। मगर क्योंकि एक प्रार्थना ने हमारा स्वर्ग के घर के अलग किया हुआ है, हमें आत्मिक तौर से जाना है। स्वर्ग कभी कभी दूर देखता है, पर धर्मशास्त्र है आशा दिलाता है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। अपने मन से परमेश्वर को ढूंढना, परमेश्वर को अपने जीवन में एक प्रार्थना में लाना चाहिए। और परमेश्वर का प्रेम ये है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। हम एक बढ़िया प्रस्तुतिकरण बना सकते हैं ये कहकर कि हम परमेश्वर को जानते हैं, फिर भी अगर हम उनका कहना नहीं मानते सब व्यक्त है, क्योंकि जो कोई यह कहता है कि मैं उन्स जान गया हूं और उसका आज्ञा को नहीं मानता, वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। हम अपने स्वर्ग के पिता के प्रति अपना प्रेम बढ़ा सकते हैं और उसके प्रेम को दर्शाता है और सोच और कार्य को परमेश्वर के वाणी से एक करें। उनका पवित्र प्रेम हमारे निर्देश करता है और प्रस्तुत करता है कि हम ज्यादा शोध और पवित्र हैं। वो हमें प्रेरित करता है कि धर्म में चलने के लिए। ऐसा करने से हम फिर से जन्म ले सकते हैं और लहू के दूर सकते हैं। हम एक लौटे का लहू, एक हम सभी पाप से मुक्त हो जाएंगे और इस दुनिया में अनंत जीवन का शब्दों का आनंद लेंगे। दुनिया के आनंद जीवन का भी जो अमर महिमा है। मेरे प्यारे भाइयों, निराश मत हो। अगर तुम कभी गिर पड़ो, उदास मत हो अगर तुम्हें लगता है कि यीशु का डिसाइपल तुम बन नहीं सकते। धर्म में चलने के पहला कदम है कोशिश करना। हमें विश्वास करने के लिए कोशिश करना है, परमेश्वर के बारे में सीखने की कोशिश करना है, धर्मशास्त्र पढ़ने का, उनके अंतिम दिनों के भविष्यवक्ताओं की वाणी का अध्ययन करना, पिता को सुनने, कोशिश करने जब तक को कार्य कठिन लग रहा और संभव हो जाए, और जो कुछ हद तक संभव लग तुम्हारे विश्वास का भाग बन जाएगा। कैसे हम पिता की आवाज सुन सकते हैं? जब तुम अपने स्वर्ग के पिता को जाओगे, तब तुम्हें उनके प्रार्थना करोगे मसीह के नाम से, वो तुम्हें जवाब देगा। वो हर जगह तुम्हारे बातें करता है। जब तुम धर्मशास्त्र के जैसा लिखा परमेश्वर के वाणी पढ़ोगे, उसके आवाज को सुनो इस कॉन्फ्रेंस के दौरान और बाद में जब तुम इन भाषणों के शब्दों पर अध्ययन करो, उनके आवाज सुनो। जब तुम मंदिर जाओगे, गिरजाघर शब्दों में भाग लोगे, उनकी आवाज सुनो। पिता की आवाज को सुनो प्रगत दुनिया के आशीर्वाद और सुंदर चीजों में, आत्मा की सहिमा में, दूसरे के साथ अपने दैनिक बातों में, गीत के बोल में, बच्चे की हंसी में, उनकी आवाज सुनो। अगर तुम पिता की आवाज को ढूंढोगे, वे तुम्हें उस मार्ग पे निर्देश करेगा जिसके द्वारा तुम मसीह के सच्चे प्रेम को अनुभव कर सकोगे। जब हम स्वर्ग के पिता के करीब आते हैं, हम और पवित्र बन जाते हैं, और जब हम पवित्र हो जाते हैं, हम अविश्वास को दूर करते हैं और हमारे आत्मा उसकी आशीष से भर जाएगा। जब हम अपने जीवन को इस दैविक ज्योति को साथ मिला लेते हैं, वो हमें अंधेरे से बहाकर निकालती और बढ़िया ज्योति ले जाएगी। ये बढ़ाई ज्योति है पवित्र आत्मा की देवभल। स्वर्ग और धरती के बीच का पर्दा प्रेम क्या मुख्य आज्ञा है? स्वर्ग के पिता का प्रेम अपने बच्चों के प्रति आनंद योजना के संदेश का मह है, जो योजना यीशु मसीह के द्वारा रुचि गई है। प्रेम का सबसे भाग्य धाग जो दुनिया का कभी जाना है। मुक्तिदाता ने कितने स्पष्ट से बोला है, उसका कहा कि ये अन्य आज्ञा प्रेम की सिद्धांत पे आधारित है। अगर तुम मुख्य कानून को दोहराओ, स्वर्ग के पिता और भाई बहनों को अपने पूरे हृदय, आत्मा और मन से प्रेम करते हो, तब और सब ठीक हो जाएगा। परमेश्वर का दिव्य प्रेम संधारण करके संधारण असंधारण सेवा में बदल देता है। दिव्य प्रेम वो कारण है जो सरल शब्दों को पवित्र दर्शाता है बदलने है। प्रेम को निर्देशन की रोशनी है जो चेले के मार्ग को उज्जवल करता है और हमारे दैनिक कार्य को संपूर्ण करता है। जीवन अर्थ और आशाचार्य द्वारा प्रेम हमारे विश्वास का नाप है, हमारी आज्ञा करने का प्रेरणा है और हमारे डिसाइपल होने का। प्रेम चेलों का तरीका है। मैं गवाही देता हूं कि परमेश्वर अपने स्वर्ग में है, वह जीवित है, वो तुम्हें जानता है, प्रेम करता है, वो तुम्हारे बारे में परवाह करता है, वो तुम्हारे प्रार्थना सुनता है और तुम्हारे हृदय के इच्छा कारण जानता है, वो तुम्हारे प्रति आनंद प्रेम से भरा है। मुझे संपत करने से जैसे मैंने शुरू किया है, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या विश्वास हमें यीशु मसीह का गिरजाघर के सदस्य माना जाता है? हमें उन लोगों में पहचान चाहिए जो परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, आत्मा, मन से प्रेम करता है और जो अपने पड़ोसी को अपने सम्मान प्रेम करता है। जब इन दो आज्ञाओं को अपने परिवारों में, अपने वार्ड्स, स्टेक्स, अपने घरों में अमल करोगे, हम ये समझना शुरू करेंगे कि क्या होता है यीशु मसीह का सच्चा डिसाइपल बनना। मैं इसकी गवाही देता हूँ यीशु मसीह के पवित्र नाम के, आमेन।
Thank you.
kind and gracious Father in heaven.
स्वर्ग पिता, हम लोग आभारी हैं कि आपके पवित्र आत्मा हमने महसूस किया है. हम आपको धन्यवाद देते हैं रेस्टोरेशन के लिए जो और आपके स्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए जो हमारे लिए और हमारे जीवित प्रॉफिट प्रेजेंट थॉमस एस मॉन्सन के लिए. हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे आशीष दे ताकि हम अपने जीवन में ये लाएं जो आपने हम सब लोगों को आज बतलाया कि यीशु मसीह के नाम से आमीन.
This has been the first session of the 179th Semi-Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Communications. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.